Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे गुरवे गौरचंद्राय राधिका तदाल्यै कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास्तदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। आप सबका स्वागत है श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर इस्कॉन वृंदावन में। सायंकाल के भक्ति रस के आज दूसरे दिन की कथा में कार्तिक मास दामोदर मास ऊर्जेश्वरी कृपामयी करुणामयी दयामयी वृंदावन ईश्वरी कृष्ण प्रेम स्वरूप श्रीमती राधिका सह दामोदर सात दामोदर के इस महीने में भाग्यशाली आप और हम सब वृंदावन में उन्हीं की भक्ति के रस का रस आस्वादन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और कर रहे हैं। ये विलक्षण है, अति अद्भुत है। भक्ति और रस दो शब्दों की बात कर रहे थे। भक्ति भगवान की स्वरूप शक्ति की कृपा से ही प्राप्त होती है। भक्ति भौतिक विषय नहीं है। और रस जब भगवान के साथ प्रेम के भाव संबंध स्थापित हो जाता है तो उससे रस प्रकट होता है, जिसका आस्वादन होता है। जब तक संबंध नहीं होता तब तक रस नहीं होता। और इन विषयों का वर्णन श्री चेतन चरितमृत में केवल विस्तार से है, क्योंकि भक्ति और भक्ति का फल भगवत प्रेम, इन विषयों के ऊपर भगवान श्री स्वयं राधा कृष्ण के युगल स्वरूप श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को इस भक्ति के रस की महिमा बताई। और ये भी हम जानते हैं, परसों इसके ऊपर चर्चा हुई थी कि 10 दिन तक श्री रूप गोस्वामी को भक्ति रस अमृत का उपदेश प्रयागराज में दिया श्री चैतन्य महाप्रभु ने। और भक्ति के सिद्धांतों में जो रस का वर्णन है, जो तीन सिद्धांत गौड़ीय वैष्णव का प्राण धन है, संबंध अभिधेय प्रयोजन, 2 महीनों तक श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को वाराणसी में उपदेश दिया। तो सामान्य शास्त्रों में ये उपदेश उपलब्ध ही नहीं है। और ये भक्ति का जो रस है, ये तो महाप्रभु प्रकट होते हैं तभी इसका प्रभाव होता है, नहीं तो ये कुछ ही महात्माओं के हृदय में ही अवरोध होके रह जाता। तो एक संस्कृत का श्लोक हर अध्याय के ऊपर कविराज गोस्वामी लिखते हैं। तो जहां श्री रूप गोस्वामी को उपदेश दिया है 19वें अध्याय मध्य लीला में, वहां ये श्लोक लिखा है जिसमें रस का वर्णन है और फिर भक्ति के रस का वर्णन आगे सुनते हैं। आप भी बोल सकते हैं, हम एक एक शब्द बोलते हैं। वृंदारण्यम रस केली वारताम काले न लुपताम निज शक्तिम उक्तः संचार्या रूपे व्यतनोत पुनः सा प्रभोर विदहो प्राग इव लोक सृष्टिम। तो इसमें शब्द क्या आया? वृंदारण्यम रस केली वार्ता। तो पहला तो ये समझ लिए, ये रस की वार्ता, वार्ता का होता है कथा, रस की बातचीत, ये तो होती वृंदावन में और कहीं होती नहीं। ये रस कहां बहता है? भक्ति का वृंदावन में, ब्रज चौरासी कोस में भक्ति का रस है और कहीं भक्ति का रस नहीं है। और भक्ति के महात्म्य को भी जब पढ़ते हैं तो हमको स्पष्ट नजर आता है, चाहे भक्ति दक्षिण भारत से प्रकट हुई लेकिन भक्ति को सुख केवल वृंदावन में मिला, यही वो नवयुवती हुई। और नारद उसका दर्शन होकर के प्रसन्न हुआ वृंदावन में। तो वृंदावरणीय रस केली वार्ताम, और रस केली वार्ताम का मतलब है भगवान श्री कृष्ण और ब्रज के जो भगवान के पार्षद हैं, जो भगवान के साथ गोलोक धाम से धरती पे आते हैं, उनके बीच में जो रसमयी लीलाएं होती हैं। इति धृकस्व लीला भी आनंद कुंडे सघोषम निमिंजंतम आख्यापयंतम, ऐसी लीलाएं केवल सघोषम अपने इस ब्रज में होती हैं और कहीं नहीं होती। इन लीलाओं का और कहीं ये लीलाएं हो नहीं सकती है। ऐसे मान्यता है कि गोपियां द्वारका एक बार गई थी, क्योंकि द्वारका का नाम गोपियों ने दिया है, द्वारका का प्राणों में नाम है कुशस्थली, कुशस्थली, और दूसरा नाम द्वारका का है अनर्त देश। भागवत में ये दो नाम है द्वारका के, अनर्त देश और कुशस्थली। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा से वहां चले गए तो गोपियों से दूरी हो गई, तो योग माया से सब गोपियों को वहां बुलाया और सब एक महल में रात को उठी तो पूछ रही है द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है, भाई दरवाजा कहाँ है, दरवाजा कहाँ है, द्वार कहाँ है, तो उसका नाम ही द्वारका हो गया। तो द्वार कहाँ है से द्वारका हो गया। वैसे तो द्वारका में भगवान की रानियों ने वहां गोपियों को, राजा रानी को कहा कि इधर गोपी तालाब है ना, वहां एक चबूतरा बना हुआ है, वहां एक चबूतरा है अभी भी। कहा कि हमने सुना है कि राजा ये रस केली वार्ता, रस केली वार्ता का मतलब रास आदि लीला, और रास आदि लीला को रोज कैसे पढ़ते हैं दामोदर लीला में, राधिका त्वदीया प्रियाया, और फिर क्या है, राधिका त्वदीया प्रियाय नमो अनंत लीलाय। अनंत लीलाय कहने से लीला कौन सी अनंत, जो कभी किसी किसी का समय ही नहीं है, सदा चलती रहती है, वो रास की लीला, उसका उल्लेख है। सनातन गोस्वामी कहते हैं अनंत शब्द कह के रास लीला का उल्लेख किया है। तो भगवान की रानियों ने कहा, द्वारका की महर्षियों ने कहा, वैसे द्वारका की महर्षियां भी राधा रानी का बिंब है, प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब है कि रास विहार हमने सुना है कैसे होता है, तो वहां पर सब रास की भूमिका तैयार हुई, मंडप तैयार हुआ, लेकिन समय के ऊपर राधिका ने कहा ये तो रास केवल वृंदावन में होता है, ये रस और कहीं संचारित हो ही नहीं सकता है। बस इतना ही कि इसकी भूमिका की बात बता दी, लेकिन ये रस यहां हो नहीं सकता है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कुरुक्षेत्र में कहा कि कृष्ण भी वही है, राधा रानी कह रही है मैं भी वही हूं, कृष्ण भी वही है। पहली बार जमुना के तट पे बंसी भट्ट पे मिले थे, उस मिलन में जो रस था वो आज यहां कुरुक्षेत्र में नहीं आ रहा है, क्योंकि रस और कहीं आया मिलेगा ही नहीं। तो रस के लिए वार्ता का मतलब भगवान श्री कृष्ण के संग, जो भगवान के गोलोक धाम से आए हुए पार्षदों के संग लीलाएं, ये लीलाएं तीन स्थानों पे ब्रज में होती हैं। भगवान श्री कृष्ण 3 साल के होते हैं तो सामान्य बच्चा 5 साल का लगता है ऐसे लगते हैं। ये उनके आयु का जो व्यवहार है, तो 3 साल 4 महीने रहते हैं गोकुल में, तो वो उनकी बाल लीलाओं की स्थली है। गोकुल श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का क्षेत्र है, इसलिए दामोदर लीला उसकी परिकाष्ठा वो गोकुल में हुई। फिर भगवान श्री कृष्ण यहां छतिक्रा में आए और ये पूरा क्षेत्र गोवर्धन आदि का यहां 3 साल 4 महीने रहे, तो इस हिसाब से भगवान कोई 11 साल के हो गए सामान्य बच्चे के हिसाब से। वैसे तो 7 साल थे जब गोवर्धन को धारण किया। यहां भगवान की पोंगल अवस्था की गौचारण लीला है, तो गौचारण लीला कल गोपाष्टमी है, वो विशेष दिन है जिस दिन भगवान 5 साल के हो गए और कहा कि अब हमारे को लज्जा आती है बछड़े चराते हुए, हम बड़े बड़े हो गए हैं अब तो गैया चराने जाएंगे। तो ये पोंगल अवस्था की लीला है, ये सखा लीला है, और ये पूरा क्षेत्र जो है ये सखा लीला का क्षेत्र है गोवर्धन के, जहां भगवान की गैया चरती थी। कल हम गए थे खेलन वन, जिसको अब शेरगढ़ कहते हैं, ये पूरा क्षेत्र भगवान के गैया चराने का है। तो यहां सखा लीला का विस्तार होता है। और फिर जब भगवान नंदगांव में रहे हैं जाके, वो भी 3 साल कुछ महीने, तो संसारी दृष्टि से तो 11 साल से 2 महीने कम ही रहते हैं, लेकिन कृष्ण के जो जो वय है आयु है उस हिसाब से किशोर अवस्था को प्राप्त करते हैं 15 साल, क्योंकि 9 साल के 15 साल के हो गए तो 15 साल से थोड़े ऊपर जाते हैं, 16 से कम रहते हैं, और 10-11 महीने के बाद तो चले गए मथुरा। तो वहां भगवान की जो लीलाएं हैं वो गोपियों के संग की लीलाएं हैं, रास लीला आदि, तो वो माधुर्य रस का वहां भगवान ने विस्तार किया है। तो ये रस के लिए वार्ता इसके लिए कहा है। इसको क्या हो गया था, काले न लुप्ताम, काल के प्रभाव से लुप्त हो गई थी। कौन सा काल था, कली काल था। भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद कलयुग के प्रभाव से 4.5 साल में ये लीलाओं की वार्ताएं ही लुप्त हो गई। तब लिखा है निज शक्तिम उक्त संचार्या रूपे, तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी निज शक्ति का संचार किया रूप गोस्वामी में। रूप गोस्वामी के द्वारा इन सारी रस केली वार्ता की लीलाओं को पुनः प्रकट करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनके हृदय में शक्ति का संचार किया। फिर उदाहरण क्या देते हैं, जैसे पहले पूर्वी विधव कहते हैं ब्रह्मा जी को, जैसे पहले ब्रह्मा जी के हृदय में सृष्टि करने का भगवान ने शक्ति का संचार किया, ब्रह्मा जी के हृदय में तेने ब्रह्मा हृदय आदि कवि है, ब्रह्मा के हृदय में जैसे भगवान ने सृष्टि कैसे करनी है ये शक्ति का संचार किया, इसलिए क्योंकि दोनों में भगवान की शक्ति का संचार है, इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं भगवान की सृष्टि लीला हो या रास लीला हो भक्तों को दोनों प्रिय हैं। तो सृष्टि लीला भी भगवान की शक्ति से ही संचारित होती है ब्रह्मा जी के द्वारा, और रास केली वार्ता भी रूप गोस्वामी में स्वयं श्री कृष्ण राधा भाव से संचार करते हैं। एक ऐश्वर्य लीला है, एक माधुर्य लीला है। सृष्टि लीला भगवान की ऐश्वर्य लीला है, वैसे करुणा की लीला है, दया की लीला है। सृष्टि भगवान की दया करुणा की लीला है, सोए हुए जीवों को जगाकर फिर भक्ति का एक अवसर देते हैं, जैसे मां बच्चे को जगाती है सुबह नींद से, ऐसे भगवान प्रलय काल की नींद से जीवों को जगाते हैं, ये उनकी करुणा है, कृपा है। तो ये श्लोक रस केली वार्ता की बात है। अब आगे का एक श्लोक में दूसरा रस पान करते हैं। अब रस की बात हो या भक्ति की बात करते हैं, भक्ति रस दो अपना विषय है। वंदे अनंत अद्भुत ऐश्वर्यम् श्री चैतन्य महाप्रभो नीचोपीय प्रसादात् स्यात् भक्ति शास्त्र प्रवर्तकः। अब भक्ति के शास्त्र, वहां रस की बात हुई, अब भक्ति के शास्त्र, ये किसको बता रहे हैं? ये सनातन गोस्वामी को बता रहे हैं। रस के लिए वार्ता रूपा गोस्वामी को, और भक्ति के रस का शास्त्र सनातन गोस्वामी को। वो 19वां अध्याय है मध्य लीला का, और ये 20वां अध्याय। अब कहते वंदे, हम प्रणाम करते हैं, 20वें का पहला श्लोक। वंदे, मैं वंदना करता हूं, मैं प्रणाम करता हूं अनंत अद्भुत ऐश्वर्यमयम, अनंत अद्भुत ऐश्वर्य। अनंत और अद्भुत और ऐश्वर्य तीन शब्द हैं। ये कौन है ऐसा अनंत अद्भुत ऐश्वर्य? किसका है? श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। बड़ा अनंत अद्भुत ऐश्वर्य श्री चैतन्य महाप्रभु। क्या किया? नीचोपियत प्रसादात, कितना भी कोई नीच हो उनकी कृपा से भक्ति शास्त्र का प्रवक्ता खोज बन सकता है, कितना भी कोई नीचा क्यों ना हो। क्योंकि श्री रूप गोस्वामी में भी अपने मुख से कहा है, मैं वराक रूपा वराक, मैं तो नीचा हूं बहुत, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ये कार्य मेरे से हो रहा है। तो सनातन आदि गोस्वामी ने हमेशा अपने आप को बहुत नीचा माना कि वो भी महाप्रभु की कृपा से भक्ति के शास्त्र का प्रवक्ता बड़ा विस्तार कर सकते हैं। तो भक्ति के शास्त्र का विस्तार सनातन गोस्वामी के द्वारा किया। अब इस श्लोक का आनंद लीजिए। ये हो गया अब 21वां अध्याय। अगत्य एक गतिम नत्वा, अगत्य एक गतिम नत्वा हीन अर्थ आधिक साधकम श्री चैतन्यम लिखाम्य अस्य माधुर्य ऐश्वर्य शीकरम। अगत्य एक गतिम, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? अगत्य जिसके लिए कोई रास्ता नहीं है, एक गतिम जिसकी एक ही रास्ता है जिसके लिए, अगत्यम एक गतिम दी ओनली वन शेल्टर फॉर कंडीशन सोल्स वुड नॉट नो गोल ऑफ लाइफ, जिनको जीवन का लक्ष्य का पता नहीं हो उनके लिए एक ही मार्ग दर्शक गति, अगत्य की गति। कौन है अगत्य गतिम? तो कहते हैं नत्वा, मैं नमस्कार करता हूं, सर झुकाता हूं उनके सामने, प्रणाम करता हूं, हीन अर्थ। हीन अर्थ का मतलब जिनको अपने जीवन के लक्ष्य का पता ही नहीं है। कितना धरती के ऊपर लोग हैं जिनके जीवन का अर्थ क्या है यह भी पता नहीं है, क्यों जी रहे हैं, काय के लिए जी रहे हैं यह भी पता नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए जिनकी कोई गति नहीं, जिनका कुछ पता नहीं, जिनका कोई पति नहीं, असल में ना गति नहीं पति नहीं, ऐसे लोगों के लिए हीन अर्थ। और फिर लिखा है अधिक साधकम, अधिक अधिक मतलब हम जानते हैं ज्यादा, साधकम कोई उनके लिए सौभाग्य लाए, श्री चैतन्य भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, लिखामी मैं लिख रहा हूं अस्य उनका माधुर्य ऐश्वर्य, उनका जो माधुर्य है जो प्रेम है और ऐश्वर्य जो उनका वैभव है, शीकरम, शीकर किसको कहते हैं, एक कतरा समुद्र होता है, एक कतरा शीकर कहते हैं एक बिंदु को पानी के, एक कतरा बरसात में कर उसको शीकर कहते हैं। तो अब श्री चैतन्य महाप्रभु, मैं उन प्रणाम करता हूं श्री चैतन्य महाप्रभु को, उनके ऐश्वर्य और माधुर्य के एक कणिका का मैं थोड़ा सा व्याख्यान करने जा रहा हूं, कह रहे हैं कविराज जी। और ये बड़ा लाभदायक है भौतिक जगत में बद्ध जीवों के भाग्य के लिए, जिनको आध्यात्मिक कुछ जानकारी नहीं है और जो एक ही सबका आश्रय है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु। श्लोक के ऊपर कुछ नहीं है लेकिन प्रभुपाद का अपना लेक्चर है। अब एक और श्लोक का रसास्वादन करके देखिए, वंदे श्री कृष्ण चैतन्य देवं तम करुणा अरणवं कलाव अपि अधि अति गूढ़ेयम् भक्तिर्येन प्रकाशिता। रस की बात हुई है, भक्ति की बात में ये बातें आते हैं। तो भक्ति की बात में कहते वंदे श्री कृष्ण चैतन्य, मैं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को वंदना करता हूं, इसका मतलब राधा कृष्ण के बहुत करुणामय रूप को वंदना करता हूं। कौन से रूप को भगवान के वर्णन करते हैं? जो भक्ति के रस को दाता है, भक्ति रस के दाता है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता दिया, जो भक्ति का शास्त्र है, भागवत धर्म है, क्योंकि भगवान ने दिया इसलिए भागवत धर्म है। लेकिन उसमें रस की वार्ता बहुत संकुचित है, विस्तृत नहीं है, क्योंकि भक्ति भगवान श्री कृष्ण के पास अपने पास तो नहीं है, भक्ति तो भगवान के भक्त के पास होती है। भाई भक्ति किस कहां होती है? भक्त के हृदय में होती है, भगवान के लिए होती है। तो यहां चैतन्य महाप्रभु राधा भाव में है, जो भक्ति स्वरूपा है, जो भक्ति की मूर्ति मति है, नैपुण्य भक्ति, राधा रानी नैपुण्य भक्ति का स्वरूप है। इसलिए जहां भक्ति की परिभाषा बताई है आगे, विशुद्ध सत्व विशेष, विशुद्ध सत्व कहते हैं भगवान की संवित शक्ति को, जिसके द्वारा भगवान श्री कृष्ण को जाना जा सके, पहचाना जा सके। और विशेष कहते हैं राधा रानी हलाजिनी शक्ति को, जिससे भगवान के रस का आस्वादन किया जा सके। ये जब तक भक्त के हृदय में प्रवेश नहीं करती हैं, तब तक भक्ति का भाव जागृत ही नहीं होता। कृष्ण प्रेम नित्य सिद्ध साध्य कभू नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने अपना प्रेम तो सबके हृदय में भर के भेजा है धरती पे, लेकिन वो बीज के रूप में है। जब तक बीज को पानी नहीं मिलेगा, सूरज की किरणों का प्रकाश नहीं मिलेगा, तब तक वो बीज फूटेगा नहीं। तो उस कृष्ण रस, प्रेम रस के को अंकुरित होने के लिए, भाव को जागृत करने के लिए भगवान की अंतरंग शक्ति संवित और हलादिनी जब हृदय में प्रवेश करती है, तब यह रस का प्रभाव होता है, उससे पहले नहीं होता। और यह कब होती है? जब अनर्थ निवृत्ति हो जाती है। आदौ श्रद्धा, जब श्रद्धा हो पहले, फिर साधु संग हो, भजन क्रिया हो, फिर भगवान का जप करना शुरू करे, साधन शुरू करे, फिर अनर्थ निवृत्ति होती है। उसके बाद श्रवण में जब रुचि होने लगे, मीठा लगने लगे हरि कथा, थके नहीं कथा सुनते सुनते, और सुने ये कथा ही और ये कीर्तन ही जीवन का सार है और सब असार है। प्रभुपाद जी का एक लेक्चर में सुन रहा था, एक इस अभी इस पढ़ रहा था, प्रभुपाद जी कहते ये, हाँ जब ये निर्णय कर ले कि मैं कृष्ण की सेवा करूंगा बस, और मेरा कोई काम नहीं, यही जीवन का मतलब है, तो लोग ऐसे सोचते सोचते क्या कहते हैं, अरे तो हमारा, मैं खाऊंगा कहां से, मेरा पालन पोषण कैसे होगा, घर कैसे चलेगा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं वो पहले नंबर का मूर्ख है जो ऐसा सोचता है। और प्रभुपाद कहते हैं ऐसे मैं क्यों कह रहा हूं, बोला इस दुनिया में किसी सेठ की नौकरी करते हो तो तुम्हारे को रुपया पैसा नौकरी के तनख्वाह देता है, ये दुनिया का मालिक उसकी सेवा करोगे कि तुम्हें भूखा रखेगा, तेरे को विश्वास नहीं है मूर्ख तू, वो अश्रद्धालु है। प्रभुपाद जी के प्रवचन का आधा आधा पूरा इस बात एक के ऊपर है कि मूर्ख है जो ऐसे कहते हैं कि हमारा पालन पोषण कौन करेगा, जब दुनिया वाले देते हैं, मनुख मजूरी देता है क्यों राखेगा राम, दुनिया वाले काम करते हैं तो मजूरी देखता है तो राम नहीं देगा क्या, भगवान नहीं उसको देगा पालने पोषण करने के लिए। ये जब तक विश्वास नहीं आता है, ये श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सो दृढ़ निश्चय कृष्ण कीर्ते सर्व सिद्धि होए, बस कृष्ण का काम है और कोई और किसी से हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमारा जीवन का लक्ष्य एक। ऐसा जब स्तर आता है तो भगवान की जो ये अंतरंग शक्ति है, क्योंकि भक्ति अंतरंग शक्ति का स्वरूप, शक्ति का ही स्वरूप है, भक्ति भगवान की स्वरूप शक्ति का प्रभाव है। किसी भगवान के प्रेमी भक्त के हृदय से ये विशुद्ध सत्व विशेष आत्मा संवित और हलादिनी शक्ति किसी के हृदय में प्रवेश करेगी तो एकदम वो कृष्ण भाव में और रस में सराबोर हो जाएगा, आनंद का अनुभव कर पाएगा। ये वहां से आती है और कहीं से नहीं आती, कहीं से मिलेगी नहीं। तो यहां लिखा है जिस बात को बात कर रहे थे, वंदे श्री कृष्ण चैतन्य देवम तम करुणा अरण्यम। करुणा अरण्यम कितना बड़ा शब्द, सुंदर शब्द है। करुणा तो सबको पता है, दया करुणा, और अरण्यम का मतलब है सागर, करुणा के सागर है। राधा रानी, राधा रानी के लिए शब्द एक क्या है, करुणामयी राधा, दयामयी राधा, वो करुणा और दया के सागर हैं। क्योंकि भगवान का मात्र का रूप है, माता का रूप है राधा रानी, और भगवान के पिता के रूप है श्री कृष्ण। बच्चे को नियंत्रण करने के लिए पिता चाहिए, और बच्चे के भावों के संरक्षण के लिए माता चाहिए। जो उसके भाव हैं उनका देखभाल माता कर सकती, और भक्ति भाव है, भक्ति भाव है, तो इसका जो पालन पोषण है वो राधा रानी के कृपा से होता है। इसलिए ये शब्द चेतना चरितामृत का, हलादिनी शक्ति कराए कृष्ण रसास्वादन, हलादिनी शक्ति करे भक्तेर पोषण। राधा रानी हलादिनी शक्ति उनका जिनका स्वरूप है, वो भगवान श्री कृष्ण को तो रसास्वादन कराती है और भक्तों का पोषण करती है, जैसे मां बच्चे का पोषण करती है। पोषण का मतलब पालन पोषण, उसकी भक्ति का पालन पोषण करना। बात हम कह रहे थे कि कृष्ण स्वयं के पास सीधा भक्ति देने का नियम बनाया ही नहीं है उन्होंने, क्योंकि कृष्ण अगर भक्ति दें तो सबको दें या किसी को नहीं दें, क्योंकि भगवान है, समभाव है। इसके लिए उन्होंने नियम बना लिया है कि भक्ति केवल मेरे भक्त दे सकते हैं, मैं नहीं दूंगा। तो भक्ति भगवान के भक्तों से प्राप्त होती। भक्ति जन्म मूल भक्त संग, भक्त जन भक्ति जन्म मूल साधु संग, भगवान के प्यारे भक्तों के संग से ही भक्ति का जन्म होता है, और भक्ति उपजे फिर भी भक्त संग मुख्य अंग। भक्ति उपजे, भक्ति तैयार होके प्रकट भी हो जाए, फिर भी संग मुख्य अंग है। जो कम से कम 10 साल से ज्यादा श्रील प्रभुपाद की कृपा से कृष्ण भावना अमृत संग का रसास्वादन कर रहे हैं, उनको ये कुछ 3-4 अध्याय 19, 20, 21, 22 और 23 ये मध्य लीला चेतना चरितामृत का कभी पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि जो काम हम करने आए हैं वो यहां लिखा हुआ है। जो असल में हम करने आए हैं वो यहां लिखा हुआ है, और ये अपने आप समझ में आएगा नहीं, लेकिन फिर भी प्रयास करना चाहिए तो जिज्ञासा जागेगी। अरे हमारा लक्ष्य तो ये है, अभी हमको हमको हम भक्त हैं फिर भी हमको पता नहीं है हमारा लक्ष्य क्या है, और हमको प्राप्त किसको करना है वो पता नहीं लग रहा है। तम करुणा अरण्यम, वो करुणा के सागर हैं। ये करुणा सागर राधा रानी का भाव है असल में, वो करुणा के सागर हैं। कलाओ अपि अति गूढ़, एक तो कलयुग है, कलाओ अपि, इस कलयुग में भी जो चीज सतलुग सतयुग में दुर्लभ थी वो इस कलयुग में अति गूढ़यम, अति गूढ़यम, अति गूढ़यम किसको कहते हैं, जैसे भगवत गीता में भगवान ने कहा मैं अति गुह्यतम ज्ञान देता हूं। वहां गुह्यतम गुह्यतम ज्ञान की परिभाषा क्या है, गुह्य ज्ञान आत्मा और शरीर को अलग समझना, ये गुह्य आत्मज्ञान गुह्य ज्ञान है। दूसरे और तीसरे भगवत गीता के अध्याय में जो ज्ञान है उसको गुह्य ज्ञान कहते हैं। गुह्य का मतलब रहस्यमय, बहुत गूढ़ ज्ञान। और सातवें और आठवें अध्याय में जो ज्ञान है भगवत गीता में उसको कहते हैं गुह्यतर ज्ञान। क्यों, क्योंकि उसमें भगवान के साथ संबंध का वर्णन है। लेकिन नवें और दसवें अध्याय के ज्ञान को भगवत गीता के वो कहते हैं गुह्यतम ज्ञान। वो भी दिया तो द्वापर युग में दिया, और बहुत संक्षेप में है, एक ही श्लोक असल में उस भाव का है, मन मना भव मद भक्तो, ये है गुह्यतम ज्ञान। दो श्लोक है पूरी भगवत गीता में गुह्यतम ज्ञान के, मनमना भव मत भक्तो सर्वधर्मान परित्यज, ये गुह्यतम ज्ञान है। इसको भगवान फिर दोबारा कहते हैं, अर्जुन मैं फिर एक बार आपको गुह्यतम ज्ञान देता हूं, तब ये दो श्लोक बोलते हैं। और यहां लिखा है कलौ अपि, वहां दो श्लोक हैं और यहां चार अध्याय हैं, और नहीं तो भी 400 से ज्यादा श्लोक हैं, फिर भी मैं कम कह रहा हूं लेकिन इससे ज्यादा है। कलौ अपि अति गूढ़ भक्ति, गूढ़ क्या है भक्ति, गूढ़ है भक्ति, ये न प्रकाशिता, जिनके द्वारा भक्ति का प्रकाश कराया गया। इसमें बहुत सुंदर कुछ श्लोक में काफी पढ़े थे, बड़े अद्भुत थे। अब यहां एक बात लिखी आपको थोड़ा सा जानकारी के लिए बहुत जरूरी है। भगवान के अंशों का वर्णन है, एक भगवान के स्वांश होते हैं, एक भगवान के विभिन्न अंश होते हैं। स्वांश सारे विष्णु तत्व होते हैं, स्व मतलब अपना अंश, जिसको कहते हैं एक श्री कृष्ण, उनसे वैकुंठ में कितने विष्णु हैं, जितने अवतार धरती पे आते हैं, अथवा सृष्टि करने के लिए तीन पुरुष अवतार होते हैं, करुण दक्षाई, गर्भोदक्षाई, क्षीरोदक्षाई, इसको बोलते हैं स्वांश। और हम जीव जो हैं उनको बोलते हैं विभिन्न अंश। तो अब विभिन्न अंश की बात हो रही है, सुनिए। से विभिन्न अंश जीव द्वित प्रकार, दो प्रकार के जीव हैं जो विभिन्न अंश है। अब सुनिए शब्द, एक नित्य मुक्त एक नित्य संसार। ये शब्द बहुत स्पष्ट है कि एक नित्य मुक्त है और एक नित्य संसार, का मतलब बार बार जन्म मृत्यु में आते हैं, नित्य बंद है। ये तो स्पष्ट हो गया कि दो श्रेणी है विभिन्न अंश की, एक नित्य मुक्त है और नित्य एक दूसरे नित्य बद्ध है। ये बात ठीक समझ में आई साफ। अब मैं आपसे एक प्रश्न थोड़ा सरल पूछूं कि ज्यादा नित्य बद्ध है कि नित्य मुक्त है, तो आपका उत्तर क्या है? हाँ, मुक्त ज्यादा है बद्ध, बद्ध। इस धरती के ऊपर मुक्त ज्यादा है, लेकिन असल में गौलोक धाम और वैकुंठ धाम में मुक्त उधर ज्यादा है, बद्ध इधर ज्यादा है। मुक्त ऐसे हैं जैसे शहर में लोग फिर रहे हैं आजाद, और बद्ध ऐसे हैं जो जेल में हैं। तो जेल में ज्यादा हैं कि बाहर ज्यादा हैं भारत में? ऐसे तीन प्रकार, तीन चौथाई, त्रिपाद, तीन चरण, वो तो वैकुंठ जगत है, आध्यात्मिक जगत है, वहां तो सारे मुक्त हैं। एक चौथाई केवल है वो ये भौतिक जगत है, उसमें बद्ध जीव है। अब मुक्त की परिभाषा सुन लीजिए, क्योंकि भक्ति जो है वो मुक्त बनने के लिए है, बाकी किसी साधन से मुक्त बनना इतना आसान नहीं है। भक्ति मुक्त के स्तर पे ले जाएगी। अब ये श्लोक सुन लीजिए, नित्य मुक्त नित्य कृष्ण चरणे उन्मुख। नित्य मुक्त की पहचान क्या है? श्री कृष्ण के चरणों के उन्मुख होते हैं, मतलब चरणों में आसक्त रहते हैं, उनकी सेवा में रहते हैं, उन्मुख। कृष्ण पार्षद वो कौन है? कृष्ण पार्षद है वो भगवान श्री कृष्ण के पार्षद। किसको कहते हैं? या हमारे सामान्य भाषा में पार्षद किसको कहते हैं? जो हमारे जो टाउन कमेटी हो उसमें जो पार्षद, ये पार्षद इस एरिया का पार्षद होता है जैसे, तो भगवान के वो पार्षद हैं। वो कृष्ण पार्षद नाम भुंजे सेवा सुख, वो कृष्ण के पार्षद है और उनको मिलता क्या है? कृष्ण की सेवा का सुख मिलता है, कृष्ण की सेवा का। अब हमारी परिभाषा भी सुन लीजिए, और बद्ध जीवों की परिभाषा ऐसे है। नित्य बंध कृष्ण हैते नित्य बाहर मुख, वो है उन्मुख और ये है बाहर मुख। जो नित्य बद्ध है, बंध लिखा है, जिसको जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमना पड़ रहा है, ये सारे कैसे हैं? बोला कृष्ण हैते नित्य बाहर मुख, ये निरंतर कृष्ण से बाहर मुख है। नित्य संसार, बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में आना पड़ता है। भुंजे नरक आदि दुख, उनको मिलता है भगवान के चरणों का सुख और इनको भोगना पड़ता है नरक का दुख। ये दोनों में अंतर है। तो उद्देश्य क्या है भक्ति का? भगवान के उन्मुख करना, बाहर मुख को उन्मुख करना, इसलिए ये श्लोक यहां आया है। कृष्ण भक्ति है अभिधेय प्रधान, कृष्ण भक्ति अभिधेय प्रधान। अभिधेय के लिए प्रभुपाद जी लिखते हैं, अभिधेय का अर्थ यह है ये हाथ मेरे शरीर का अंग है और यहां इसमें खुजली हो जाएगी तो मेरे को किसी से पूछने की जरूरत नहीं, किसी से मांगने की नहीं, कोई आज्ञा मांगने की जरूरत नहीं, दूसरा हाथ अपने आप इधर जाके खुजा करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, ये स्वाभाविक है कि नहीं? तो अभिधेय का अर्थ यह है कि जैसे हाथ में खुजली होता है, दूसरे हाथ का ये स्वत नेम है कि जाके उसकी खुजली करके साफ करना, ठीक करना। तो हम भगवान के अंश हैं तो हमारा धर्म है कि भगवान की सेवा में लगे रहे और भगवान हमारा रक्षण करते रहे। इसको छोड़ा तो दुख हो गया। तो अभिधेय का अर्थ है ओब्लिगेशन, ओब्लाइज टू। तो भक्ति जो है ये हमारा स्वरूप है, सेवा हमारा, भगवान हमारा सेवा स्वरूप है और भगवान का रक्षा स्वरूप है। हमारा सेवा स्वरूप है और भगवान रक्षा, और यही तो सर्वधर्मान परित्यज्य का क्या है, सर्व पापे भी मोक्षायिष्यामि, मुक्ति दूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा। नमे भक्त प्रणश्यति, और भगवान रामचंद्र शक्र देव प्रपना, एक बार कह दो कि मैं कृष्ण आपका हूं, राम आपका हूं, रक्षामि इदम मे व्रत, उसकी मैं रक्षा करता हूं, ये मेरा व्रत है, ये मेरा संकल्प है। ये श्लोक यहां बताया है चैतन्य महाप्रभु ने, आगे आएगा। तो ये एक प्रकार का हमारा भगवान के साथ संबंध है, हम सेवा करेंगे भगवान की रक्षा के, अपने आप स्वत ही पात्र बन जाएंगे। तो ये उद्देश्य है भक्ति का। कृष्ण भक्ति है अभिधेय प्रधान, भक्ति मुख्य, भक्ति मुख्य निरीक्ष कर्म योग ज्ञान। कर्म ज्ञान की कोई अपने आप स्वतंत्र कुछ नहीं दे सकते हैं, भक्ति के आश्रित है वो सब, इसलिए भक्ति ही एक मुख्य हमारा धर्म है। अब एक और श्लोक का रस आस्वादन करते हैं, बड़ा मधुर श्लोक है, बोलिए। चिराद अदितम निजगुप्त वित्तम स्वप्रेमा नामामृतम अत्य उदारः आपम आपम आपामरम यो विततारा गौरः कृष्णो जनेभ्यः तम अहम् प्रपद्ये। चिराद अदित्तम निजगुप्त वित्तम, चिरकाल से चिरकाल का मतलब है बहुत समय हो गया, कितना समय, ब्रह्मा जी का एक दिन हो गया, हजार बार चतुर्युग बीत गए, एक हजार बार चार चार युग बीत गए, करोड़ों करोड़ों वर्ष हो गए, चिराद अदित्यम नहीं दिया गया, क्या नहीं दिया गया, कई अवतार आए, एक नहीं कई अवतार आए, ब्रह्मा जी के एक दिन में कई अवतार आते हैं, बहुत अवतार आए, लेकिन एक चीज नहीं दी गई, क्या नहीं दिया गया, निज गुप्त वित्तम, निज का मतलब अपना स्वयं का, गुप्त का मतलब रहस्यमय, और वित्तम का मतलब धन। अब धन ये क्या है, हमारे आचार्यों ने कैसे गाया है, गोलोकेरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, तो गोलोकेरा प्रेम धन ये है निज गुप्त वित्त, ये है निज गुप्त वित्त, भगवान का अपना जो निजी धन है वो ये है, चिराद न अदितम निज गुप्त वित्तम, कैसा है ये निज गुप्त वित्त, ये धन कैसा है भगवान का, तब कहते हैं स्वप्रेम कृष्ण प्रेम, स्व मतलब अपना स्वयं का प्रेम, कृष्ण प्रेम, बोले ये कृष्ण प्रेम कैसे रूप में है, इसका स्वरूप क्या है, तब कहते हैं नाम अमृतम, ये नाम के अमृत है, ये नाम अमृत के रूप में, तो कृष्ण प्रेम क्या, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, भगवान स्वयं श्री कृष्ण नाम के रूप में प्रकट हुए हैं, तो कृष्ण प्रेम क्या है, नाम अमृतम, अब नाम अमृतम है, इसके बाद बड़ी बात लिखिए, अति उदार है, अति उदार है, ये लाया कौन है, बोला कंजूस नहीं लाया है, धन कंजूस के पास हो तो किसी काम का नहीं, कितना भी धन कंजूस के पास हो तो किसी जाम काम का नहीं है, और ये कौन लाया है, अति उदार है, बहुत उदार है, उदार है का मतलब है आप पामराम यो वित तारा, पामर का मतलब होता है नीच से नीच, जो पामरों में पामर है, पतितों में पतित है, उनका भी उद्धार किया गौरा ने, गौरा श्री चैतन्य महाप्रभु ने, किसको किसको दिया, काले को न देखा न गोरे को देखा, न अपने को देखा न पराये को देखा, वो तो बरसा की तरह सब जगह कृष्ण प्रेम को बरसाया, बाकी लेने वाला अपने स्वभाव के अनुसार ले पाया, लेकिन उन्होंने तो बाढ़ प्रेम की माला गूंथ के लाए और कलयुग में सबके गले में पहनाई, कोई पहन के परमानंद को प्राप्त किया और कोई मूर्ख उसको संभाल नहीं पाया, लेकिन गौरंग महाप्रभु उस कृष्ण प्रेम की माला गूंथ के लाए, ऐसा चेतना चरितमृत में लिखा है, ये प्रेम का अति आ पामराम, अति अति पामर जो है, यहां पामराम की परिभाषा लिखी है, अधम पर कहते हैं, पामर को कहते हैं अधम, और दूसरा शब्द भगवत गीता में पामर के लिए नराधम, और नराधम की परिभाषा वहां श्रील प्रभुपाद ने लिखा है, इस वक्त धरती के ऊपर 99.99% नराधम है, और फिर लिखा है क्यों, क्योंकि जन्म किसी का भी गर्भदान संस्कार से नहीं हुआ है, पहला संस्कार जो वेद पद्धति ने दिया है वो है गर्भदान संस्कार, वो संस्कार इस वक्त कलयुग में दुर्लभ कहीं दिखने को मिलता है, तो जो जन्म हो रहा है ये सब नराधम है, पामर है, इनके ऊपर कृपा हुई, अति उदार गौरा, गौरव गौरंग महाप्रभु बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, गौर कृष्णो गौर गौर सुंदर, क्या किया उन्होंने, कृष्ण जनेभ्यस्तमहं प्रपद्ये, भगवान श्री कृष्ण स्वयं है जो गौरा आया है वापस, और जनेभ्य सामान्य जनता को ये कृष्ण प्रेम का प्रसाद दिया, इसलिए हम उनको प्रणाम करते हैं, और आगे क्या लिखते हैं देखिए, ए भी सुन भक्ति फल प्रेम सुनो सनातन। अब कहते हैं सनातन गोस्वामी आगे सुनो, ए भी सुन भक्ति फल, भक्ति करोगे तो उसका फल ये है। क्या है भक्ति का फल? प्रयोजन। क्यों भक्ति कर रहे हैं? प्रयोजन क्या है? मूर्ख भी कोई प्रयोजन के बगैर काम नहीं करता है। यार श्रवणे, जिसके सुनने से हाय भक्ति रस ज्ञान, भक्ति के रस का ज्ञान हो। ये शब्द आया भक्ति रस। हमने तो उस दिन ऐसे ही पूछा, कोई प्रोग्राम नहीं था कि हमको बोलना है यहां, और किसी महाराज को बोलना था किसी कारण से। हमसे पूछा महाराज किसी कारण से नहीं बोल पा रहे हैं तो आप बोलिएगा, क्या बोलेंगे बताइए। तो मुझे ध्यान में कुछ नहीं है। फिर ऐसे मैंने कहा अपने भक्ति रस के ऊपर बोलेंगे। अब मैंने सोचा था मैंने को मालूम नहीं है क्या बोलूंगा, तो मैं देखा तो कहां कहां भक्ति रस के शब्द है, सब अपने आप निकल के आ गए। तो इसका मतलब ये है, कार्तिक महीने में भगवान चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है कि हम बैठ के इस भक्ति के रस के बारे में थोड़ा मंथन करें। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो बिना प्लान के, बिना योजना के ये अपने आप प्रकट हुआ है। हमारे मन में ये था कि हम भक्ति के रस में रास कैसा है। हम उस दिन केवल एक रास के पहले अध्याय के श्लोक के ऊपर चर्चा की थी। असल में ये शब्द रस में वो आते हैं। रस होता कब है? ये जो पांच भाव है ना, शांत दास्य सखा, ये सारे भाव मिलके रस बनाते हैं। रस तब बनता है, ये रस की परिभाषा ये है, इससे रस बनता है। और रस के फिर बहुत बड़ा विस्तार है रस का। उस रस तक न जाके यहां है भक्ति रस ज्ञान। ये भक्ति रस का जो जानकारी है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये स्तर कैसा होता है ये सुन लीजिए। कृष्ण रति गाढ़ हईते प्रेम अभिधान। कृष्ण रति गाढ़, इसका मतलब क्या है? कृष्ण में गाढ़ रति हो। रति का अर्थ है भाव, गाढ़ रति का अर्थ है बहुत गहरा कृष्ण में भाव उत्पन्न हो जाए। कृष्ण भक्ति रसे रही स्थाई भाव नाम। इस गाढ़ रति का नाम है कृष्ण भाव, कृष्ण रस, भक्ति रसे रह, कृष्ण के भक्ति के रस का स्थाई भाव नाम। अब कृष्ण जो सब्जेक्ट रखा था उसको पूरा करते हैं कथा करके। तो भक्ति के रस का, किसको कहते हैं भक्ति का रस? जब स्थाई भाव की प्राप्ति हो। कैसे प्राप्ति होगी? बोला गाढ़ प्रेम से, गाढ़ रति हो जाए। अंग्रेजी में पढ़ लूं श्रील प्रभुपाद की ट्रांसलेशन, व्हेन अफेक्शन फॉर कृष्ण रात गाढ़ रति, गाढ़ होने लगे, डीप गाढ़। गाढ़ की परिभाषा कैसे लिखी है मालूम है? गन्ने का जूस ले आइए तो बड़ा पतला होता है, उसको आग के ऊपर चढ़ाइए तो गुड़ बन जाएगा, और गुड़ को और ज्यादा थोड़ा बनाए तो खांड बन जाएगा, और उसको ज्यादा और मिश्री बन जाएगा। तो ये होगी गाढ़ रति, इसको कहते हैं। जितना गहरा होता जाएगा उतना गाढ़ होता जाएगा। दूसरा उदाहरण क्या दिया? दही बड़ा अपने आप में अच्छा है, लेकिन उसमें कपूर मिलाओ, काली मिर्च मिलाओ, और अधिक चीजें मिलाओ तो और रसीला हो जाएगा। तो ये अंदर सारे भाव, ऐसे भावों का यहां वर्णन ऐसा लिखा है। ये शब्द अभी हमारा इनका चीजों का अनुभव ही नहीं है इसका, ऐसे बड़े सुंदर शब्द हैं। अब भाव क्या है ये भी सुन लीजिए। अब वो हमने आपको पहले कह दिया, शुद्ध सत्व विशेष आत्मा प्रेम सूर्यांशु साम्य भाक रुचि भी चित्त मश मर्षण्य। किरदसो भाव उच्यते, ये गाढ़ भाव क्या होता है? तब कहते हैं जब भगवान की अंतरंग संवित और हलादिनी शक्ति का प्रकट्य होता है तो उसको कहते हैं प्रेम सूर्य अंश। तो जैसे सूर्य उगने से पहले किरण आती है, उससे पहले लालाई होती है, उसको भाव कहते हैं। तो ये भाव भक्ति की परिभाषा है। और उस वक्त होगा क्या? उस वक्त एक बात क्या होगा? चित्त मर्षण, हृदय बहुत मुलायम कोमल हो जाएगा। चित्त मर्षण, चित्त मर्षण, मर्षण मर्षण का मतलब होता है नरम होना। तो चित्त एक नरम हो जाएगा, यह है स्वरूप लक्षण। और दो चीजें और होंगी, वो है तटस्थ लक्षण। दो चीजें और क्या हो गया? रुचि भी। रुचि भी ही, रुचि भी का मतलब है भगवान की सेवा करने के लिए मन में भाव आएगा। रुचि भी का अर्थ लिखा है बहुत टेस्ट आने लगी। रुचि टेस्ट लिखा है यहां। टेस्ट का मतलब है क्या? भगवान श्री कृष्ण की सेवा करें, कृष्ण के निकट जाएं, कृष्ण कृष्ण कैसे प्रसन्न करें, ऐसा भाव हृदय में उत्पन्न होगा। भक्ति करते करते जब विशुद्ध सत्व भगवान की अंतरंग शक्तियों का हृदय में प्रवेश होता है तो वो बीज के ऊपर मानो के सूर्य की किरण पड़ी हो और अमृत जल पड़ा तो वो फूट पड़ेगा। वो जो बीज फूट पड़ता है वो प्रेम का अंकुर हो गया। तो प्रेमेर अंकुर, उसको भाव कहते हैं। और उस वक्त क्या होगा? हृदय बहुत मुलायम हो जाएगा, चित्त मर्षण हो जाएगा और बहुत से नाना भाव हृदय में उठेंगे कृष्ण के भक्ति के, कृष्ण के निकट जाने के, सेवा करने के। अब आगे लिखते हैं भाव के दो स्तर हैं। अब प्रेम किसको कहते हैं ये सुन लें। अब ये सब कैसे होगा, इसका पूरी श्रृंखला लिखी हुई है। कृष्ण पंचविध रस, भक्ति के रस पांच प्रकार के, ये रस शब्द यहां है। पंचविध रस शांत दास्य सख्य वात्सल्य माधुर्य नाम श्रृंगार रस सबाते प्राबल्य। अब कहते हैं ये रस कौन से भक्ति के हैं? कि ये पांच प्रकार के ये रस हैं भक्ति के। तो भक्ति के ये पांच प्रकार के रस हैं और इन सब में प्राबल्य, प्राबल्य का मतलब है सबसे ज्यादा प्रबल कौन सा है? माधुर्य। तो ये रस भक्ति से हमारे जीवन में उत्पन्न होने चाहिए। मेरे ख्याल में 6:30 होने वाले हैं तो कथा को यहां विराम देंगे। विषय तो ऐसा है कि एक महीना चले गए, एक महीना क्या, हम तो सारी जीवन चलाएं तो भी पूरा नहीं होगा। महाप्रभु ने 2 महीने में बताया। तो ये विषय ऐसा है कि चलता रहना चाहिए, लेकिन आज की कथा से इतना प्रेरणा आपको मिलती है कि हम भक्ति कर रहे हैं और भक्ति के रस के पिपासु होना चाहिए, जिज्ञासु होना चाहिए, प्यासु होना चाहिए। और उसके लिए जिनके पास प्यास है उनके पास बैठना चाहिए, तभी ये रस प्रकट होंगे। और ये सिद्धांतों को थोड़ा सा बड़ी बड़े बड़े परिश्रम के साथ श्रील प्रभुपाद ने, आश्चर्य नहीं लगता है, बंगाली भाषा में तो पहले है चेतना चरितामृत, उसका श्रील प्रभुपाद ने अंग्रेजी में अनुवाद किया और फिर परम पूज्य भक्तिचारू स्वामी महाराज के कह के इसको फिर बंगाली में अनुवाद करो बंगाली से अंग्रेजी में करके फिर बोला इसी को बंगाली में वापस अनुवाद करो। इसका मतलब कि प्रभुपाद जी ने उन भक्ति के रसों को बहुत सरल किया है कि वापस उसका बंगाली में अनुवाद कराया, जो बंगाली से अंग्रेजी, अंग्रेजी से फिर बंगाली। तो इसलिए ये चार अध्याय 19, 20, 21, 22 और 23 थोड़ा सा इसको पढ़ने का एक बार प्रयास करना चाहिए। ये भक्ति के रस के अध्याय हैं। हरे कृष्ण, श्री प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे।